नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत चीन सीधी उड़ानें और सीमा व्यापार पुनः शुरू करने पर सहमत हुए। सीमा पर शांति के लिए कार्य समूह गठित करने का भी निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध से क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सहअध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत। आज गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी। और रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण जीता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन सीधी उड़ान सेवा बहाल करने और हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बीच कल नई दिल्ली में इस पर सहमति बनी। बैठक में दोनों पक्षों ने साझा हित के आपसी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भारत चीन सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने और सीमा विवाद के परस्पर स्वीकार्य समाधान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ नई दिल्ली में बैठक की। चीन के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का संदेश और तियानचिन में प्रस्तावित शंघाई शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण सौंपा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दोनों पक्षों ने विभिन्न आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों और आदान प्रदानों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत सीमा परिसीमन के आरंभिक सफलता का पता लगाने के लिए एक विशेष समूह गठित होगा। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा सीमा प्रबंधन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र के तहत कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस समझौते के तहत लोगों के बीच आदान प्रदान पर भारत चीन उच्च स्तरीय तंत्र की तीसरी बैठक अगले वर्ष भारत में आयोजित की जाएगी। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में सीमा निर्धारण में शीघ्रता से प्रगति की संभावना तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा पार नदियों के सहयोग पर विचार विमर्श किया और भारत चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के पूर्ण रूप से पालन और संबंधित समझौता ज्ञापनों के नवीनीकरण पर संवाद जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज व्यापार, आर्थिक कार्य, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सहअध्यक्षता करेंगे। वे मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। वे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य रूस के साथ सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को की यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। कल एनडीए संसदीय दल की नई दिल्ली में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से श्री राधाकृष्णन का परिचय कराया और उन्हें बधाई दी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों से श्री राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी।
उधर विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होना है। कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। श्री जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और राजस्थान से संबंधित मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में रिंग रोड परियोजना से यातायात में सुविधा होगी और जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को बिहार के गया में ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी पर बने लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल से पटना जिले का मोकामा बेगूसराय से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। ये पुल 2 लेन वाले पुराने रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समांतर बनाया गया है। नए पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को 100 किलोमीटर तक घट जाएगी। ये परियोजना खास तौर से भारी वाहनों की यात्रा को सुगम बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला 2017 में रखी थी। आज से देश भर में उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस स्वदेशी तकनीक का विकास डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ने किया है। ये तकनीक मेघराज 2.0 क्लाउड पर काम करती है। इस तकनीक से अब लोगों को QR कोड से भुगतान करने, OTP से डिलीवरी लेने और सटीकता बढ़ाने के लिए 10 अंकों वाले DigiPIN का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। दक्षिण मध्य रेलवे के इतिहास में पहली बार इस समय 5 विभाग महिला अधिकारियों द्वारा संचालित हैं। इनमें प्रचालन, वाणिज्य, वित्त, सुरक्षा और चिकित्सा विभाग शामिल हैं। के पद्मजा मुख्य प्रचालन प्रबंधक हैं और गाड़ियों के समय पर चलने का काम देखती हैं। इति पांडे यात्री सेवा, माल ढुलाई, राजस्व का काम देख रही हैं। मुख्य सुरक्षा आयुक्त रामा सिंह ठाकुर रेल सुरक्षा बल का नेतृत्व कर रही हैं। मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर निर्मला नरसिम्हन 8 बड़े अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवा प्रभारी हैं। प्रधान वित्त सलाहकार टी हेमा सुनीता वित्त प्रबंधन और राजस्व वृद्धि की प्रभारी हैं। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से पिछले 4 दिन में 21 लोगों की मौत हुई है। मुंबई, ठाणे, पालघर, कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों में 4 दिन से मूसलाधार बारिश जारी है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नांदेड़ जिले में 8 लोग मारे गए हैं। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से आवाजाही और जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। आसपास के कई क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश से शहर में रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है।
भारी बारिश के कारण कल शाम कुछ घंटों के लिए उपनगरीय रेल सेवाएं बाधित रही, लेकिन रात को लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गईं। हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई, जिसमें मुंबई हवाई अड्डे पर कम से कम 14 आने वाली उड़ानों को खराब मौसम के कारण लैंडिंग से रोकना पड़ा और 5 अन्य उड़ानों का रूट बदल दिया गया। मोनोरेल सेवाएं भी प्रभावित हुई। बारिश के कारण सेवा में बाधा आने पर 2 अलग-अलग घटनाओं में मोनोरेल में फंसे लोगों को निकालना पड़ा। मीठी नदी के पास जलस्तर बढ़ने के कारण लगभग 500 निवासियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कल स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों के लिए छुट्टी घोषित की थी। निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम करने को सलाह दी गई थी। मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि रायगढ़ के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कम ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 7 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी आज तेज वर्षा की आशंका है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल सवेरे तक हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। उधर पाकिस्तान में आज तड़के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंद कुश क्षेत्र में धरती की सतह से 190 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
जी फरहत, खेलों की दुनिया में सबसे पहले शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भारत की रश्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक जीता। ये इस प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का तीसरा स्वर्ण है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर एक और अंतर्राष्ट्रीय पदक भारत के खाते में डाला। रश्मिका ने वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर ने पलक और सुरुचि फोगाट के साथ टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और अगर बात करें कुश्ती की तो बुल्गारिया में 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की कुश्ती चैंपियनशिप में सुमित मलिक ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के मोगमेद आजामीरो को हराया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में सृष्टि 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। 57 किलोग्राम भार वर्ग में तपस्या ने भी जापान की सोवाका उचिदा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और फरहत, अब रुक करते हैं फुटबॉल के मैदान का। डूरंड कप फुटबॉल में कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शिलोंग लाजोंग एफसी को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। विजेता टीम की ओर से एकमात्र गोल रिडीम तलांग ने किया। दूसरे सेमीफाइनल में आज डायमंड हार्बोर एफसी और इमामी ईस्ट बंगाल एफसी आमने सामने होंगे। फाइनल मुकाबला 23 अगस्त को खेला जाएगा। और फुटबॉल की ही सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम आज भूटान के थिम्फू में नेपाल के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चाम लिंगथांग स्टेडियम में भारत के समय के अनुसार दोनों टीमें दिन में दोपहर 1:30 बजे से आमने सामने होंगी। जी फरहत, आज बस खेलों की दुनिया से इतना ही।
धन्यवाद मुकेश। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है निखिल कुमार।
धन्यवाद फरहत। भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनने की खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, सीधी उड़ाने और सीमा व्यापार फिर शुरू होंगे। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत और चीन के रचनात्मक रिश्ते वैश्विक शांति के लिए अहम। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, नई सुबह, भारत चीन सीमा विवाद का हल तलाशेंगे, सड़क मार्ग से फिर व्यापार। उपराष्ट्रपति चुनाव में पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार घोषित करने का समाचार कई अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। देशबंधु लिखता है, एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया उम्मीदवार। शुभमन गिल के उपकप्तान बनने का समाचार राष्ट्रीय सहारा ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर सचित्र दी है, T20 में उपकप्तान बनकर लौटे शुभमन। भारत की आर्थिक वृद्धि पर टैरिफ का असर नहीं, S&P ने कहा, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास और आर्थिक सुधारों से कम होंगे बाहरी प्रभाव। यह खबर दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने उम्मीद शीर्षक से खबर प्रकाशित की है, दोबारा जीवन के लिए शरीर कर रहे हैं फ्रीज, कंपनियां इंसानों की मौत के बाद दिमाग समेत शरीर को जमा रही हैं। 6 महीने के भीतर मिल सकता है दिल्ली चिड़ियाघर को जिराफ, एनिमल एक्सचेंज के तहत कई चिड़ियाघर से चल रही थी बात, ये जनसत्ता की सुर्खी है।
धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन सीधी उड़ाने और सीमा व्यापार पुनः शुरू करने पर सहमत हुए। सीमा पर शांति के लिए कार्य समूह गठित करने का भी निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध से क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी CP राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत और रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।